ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सो असीम जी, क्या प्लीज रीड इन इंग्लिश और हिंदी? How many of you do not understand Hindi? Everyone knows Hindi? Chaturbhuj, you don't know Hindi? Jante Hindi na? How many of you do not understand Hindi? You know Hindi? Yes? What language you know? That's why he's not replying. So, one who do not know Hindi, please go backside, there'll translation. Backside. Jo Hindi jante hain, aage jao. Santadas, sab aage jao. Hindi janne wale aage jao, main Hindi pravachan karunga. Aage aur aa jao. Jo late latif aane wale hain, piche baithenge. Aap log itna der pehle aakar kyun piche baithoge? So I need a Hindi book. Om Ram Hrim Hrum ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुण विशेषै विलक्षितात्मने आकुतिनां चित्तानां चेतसां विशेषाणां च अधिपते षोडश कलाय छन्दो मयी अन्नामयी अमृतमया सर्वमया सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। ओम भ्राम ह्रि ह्रूम ओम नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुण विशेषणे विलक्षितात्मने आकुतिनाम चित्तिनाम चेतसः विशेषणाचाधिपतये षोडश कला कलाय छंदोमय अन्नामय अमृतमया सर्वमयाम सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। ओम हे प्रभु ह्राम ह्रीम ह्रूम बीज मंत्र। ओम हे प्रभु नमः आपको नमस्कार है। भगवते भगवान को हृषीकेशाय जो इंद्रियाधिपति हैं हृषीकेश हैं। Who is translating in English? Where is Raghav? So the devotee who do not know Hindi, they may avail this facility of this translation and give the headphone also. So Mataji are there. Sarvaguna सब प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त, विशेष ही विभिन्न प्रकार के, विलक्षिता जो देखने को मिलता है या जो देखा जाता है, आत्मना आत्मा में, आकुतिनाम विभिन्न प्रकार के कार्यों में, चित्तनाम विभिन्न प्रकार के ज्ञानों से, चेतसाम मन, मन का फंक्शन का हिंदी क्या, मन का कार्य, यथा स्वीकार करना और अस्वीकार करना, विशेषणाम और उनके विषय वस्तुएं, च और अधिपतये उनके अधिपति, षोडश कलाया सोलह प्रकार के आदि बीज, यथा दस ग्यारह इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय, छंदमया वैदिक संस्कृति के भोक्ता, अन्नमया जो समस्त जीवात्माओं का भरण करता है, अमृतमया जो अमर रहता है, स्वरमया जो सर्वव्यापी है, सहसे शक्तिमान, ओजसे इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला, बलाय शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला, कांताय समस्त जीवात्माओं के परम भर्ता या स्वामी, कामाय भक्तों के समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला, नमः नमस्कार है, ते आपको, उभयत्र सदैव दिन में रात में तथा अगले जीवन में भी, भूयात शुभ हो। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे समस्त इंद्रियों तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के नियंता भगवान श्री ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त वैदिक मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत ग्यारह इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण हैं, जो उनसे अभिन्न हैं। निस्संदेह वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जगत, इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। तात्पर्य, इस श्लोक में मायामय शब्द की आगे भी व्याख्या की गई है। किस प्रकार भगवान विभिन्न दिशाओं में अपनी दशा का प्रसार करते हैं, प्राश शक्ति विवही वसुरते, श्री भगवान की शक्तियां कई प्रकार से समझी जाती है। इस श्लोक में प्रत्येक वस्तु का यहां तक कि हमारे देह मन कर्म बल शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संकल्प का भी मूल स्रोत कहा गया है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान की शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवत गीता 7:8 में कहा गया है, रसो हम अश्वकौंतेय, जल का स्वामी भी कृष्णमय है। हमारे भरण के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें क्रियाशील तत्व श्री कृष्ण ही हैं। इस श्लोक की रचना श्री भगवान की स्तुति स्वरूप ऐश्वर्य की देवी रमा ने की है। यह चेतना शक्ति से ओतप्रोत है। गुरुदेव के निर्देशानुसार सबों को इन मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह ईश्वर का पूर्ण भक्त बना जा सकता है। भौतिक संबंध बंधन से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए और मुक्ति मिलने के पश्चात भी वैकुंठ में श्री भगवान की पूजा करते हुए इसे जपते रहना चाहिए। निसंदेह सभी मंत्र इस तथा अगले जन्म के लिए हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 9:14 में पुष्टि की है। सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमन्तस्तस्य मां भक्त्या नित्यदुक्ता उपासते। ए महात्मा जन, नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त इस जीवन में तथा अगले जन्म में महामंत्र या किसी मंत्र का जप करता है वो नित्य युक्त उपासयुक्त कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो विषय वस्तु तो बड़ी सुंदर है, घंटों बात किया जाए कमी लगेगा, लेकिन दुख की बात है आज दोनों सेक्रेटरियों की मीटिंग है 9 बजे, तो हमें यही खत्म करना पड़ेगा। चलिए, यह जो अध्याय है इस अध्याय में जम्बूद्वीप के का वर्णन किया गया है। वहां के निवासी, वहां के आराध्य इत्यादि का वर्णन किया गया है। जम्बूद्वीप के 6 खंडों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रथम खंड जो है वह है भद्रासौर वर्ष। वहां पर भद्रासौर वर्ष में लक्ष्मी जी पूजा करती हैं और उनके साथ में धर्मपुत्र भद्रश्रवा तथा उनके जितने प्रमुख सेवक गण हैं ये सब मिलकर के भगवान के हयग्रीव स्वरूप का वहां पर पूजा करते हैं। याद रखिएगा, जो भी वर्ष है, भारतवर्ष भी आएगा वो आगे आएगा, तो जो वर्ष है वहां पर आराध्य देव कौन है और वहां पूजा कौन करते हैं और किन किन स्तुतियों से पूजा की गई है वो सब बताया गया है। तो भद्रासौर वर्ष में साक्षात लक्ष्मी जी धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके प्रमुख संगियों के साथ में भगवान के हयग्रीव स्वरूप का वहां पर पूजा करते हैं। पूजा के वस्तु हैं, जैसे इस मंदिर के पूजनीय हैं राधा रास बिहारी, सीताराम भी हैं, गौरीदास की
राधा रास बिहारी मंदिर कहलाता है, क्या कहलाता है? राधा रास बिहारी मंदिर। वैसे ही भद्रास्व वर्ष में भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। दूसरा वर्ष है जिसे हरि वर्ष कहा जाता है, और हरि वर्ष में भगवान नरसिंह देव आराध्य देव हैं। प्रहलाद महाराज अपने प्रमुख सेवकों के साथ में, भक्तों के साथ में वहां पर विभिन्न मंत्रों और प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान नरसिंह देव का उपासना करते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह जो वर्ष है यह केतुमाल वर्ष है। अलग अलग वर्षों में आराध्य देव अलग अलग हैं और उनके प्रधान हेड पुजारी भी अलग अलग हैं। प्रथम में हेड पुजारी हैं धर्मपुत्र भद्र सर्वा, दूसरे के हेड पुजारी हैं प्रहलाद जी, और अभी जो केतुमाल वर्ष है इसके हेड पुजारी हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी है? और यहां पर वे काम देव की पूजा करती है, और उनके असिस्टेंट कौन हैं? वे हैं संबत्सर नाम के प्रजापति के पुत्र और पुत्री। ये संबत्सर वही हैं जो इंद्र के आज्ञा से काम करते हैं, बड़ा बड़ा मेघ का वर्षा करना, उसमें से एक है संबत्सर। बड़ा बड़ा मेघ इस पिलर के समान वर्षा होता है, गिरिराज गोवर्धन पर संबत्सर का वर्षा हो रहा था, तो एक प्रजापति हैं। तो ये अपने इनके पुत्र और पुत्रियां लक्ष्मी जी के अनुगत्य में कामदेव का सेवा करते हैं, कामदेव का उपासना करते हैं। ठीक है, अब तक से तीन वर्ष, दो वर्षों का वर्णन हुआ, तीसरा वर्ष चल रहा है। चौथा वर्ष जो है वह है रम्यक वर्ष, और इस वर्ष के हेड पुजारी हैं मनु जी। मैं हेड पुजारी कह रहा हूं ताकि हम लोग समझ सकें अपने अनुसार। तो वहां के हेड पुजारी हैं मनु जी, और वहां पर मनु जी अपने अनुवायुओं के साथ में भगवान के मत्स्य रूप का आराधना करते हैं। जय श्री गौर निताय राधारास बिहारी सीताराम हनुमान की जय। ठीक है, याद हो गया, चलिए फिर से एक बार करते हैं। पहला जो वर्ष है उसका नाम क्या है? भद्रास्व वर्ष। उसके हेड पुजारी कौन है? हां, वहां भद्र सर्वा जी अपने प्रमुख सेवकों के साथ में पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं? आराध्य देव कौन है? हेड हयग्रीव भगवान, वेरी गुड। हरिवर्ष खंड, वहां के आराध्य देव कौन है? हां, और हेड पुजारी कौन है? प्रहलाद जी, वेरी गुड। अभी जो है एक केतुमान वर्ष, केतुमाल वर्ष, तो यहां के हेड पुजारी कौन है? लक्ष्मी देवी। और वो किन के साथ में पूजा करती हैं? संबत्सर के पुत्र और पुत्रियों के साथ में। और वहां के आराध्य देव कौन है? कामदेव, वेरी गुड। अब आया रम्यक वर्ष, रम्यक वर्ष के हेड पुजारी कौन है? मनु जी, हां। और वहां पर वे किनका पूजा करते हैं? मत्स्य भगवान का, वह आराध्य देव हैं। छठा जो है वह है हिरण्य वर्ष, और हिरण वर्ष के जो हेड पुजारी हैं वो पितृराज हैं, जिनका नाम है आर्यमा पितृराज, और वहां के आराध्य देव जो हैं वो हैं कक्षक भगवान। केशव धृता कक्षक रूपा जय जगदीश, कछुआ के रूप में जो भगवान आए थे। छठा जो है वो उत्तर कुरु वर्ष है, और वहां के हेड पुजारी जो हैं, पहले माताजी लोग पूजा करते थे, वो हैं पृथ्वी देवी, हेड पुजारी हैं वहां के, हेड कहीं हेड पुजारी हैं कहीं हेड पुजारी हैं, वहां पृथ्वी देवी, और पृथ्वी देवी भगवान वराह देव का आराधना वहां पर करती है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में छह वर्षों का वर्णन किया गया है। ये वर्ष मतलब नहीं 365 डेज वाला वर्ष, ये नहीं, जैसे भारत वर्ष है ना, भारतवर्ष एक भूखंड है, वैसे ही एक खंड है मद्रास वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, उसके बाद रम्य वर्ष, हिरण्य वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष। तो अर्थात से छह वर्ष का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ये जो आज का श्लोक है यह केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी अपने आराध्य देव, अपने पति देव की उपासना कर रही है और वहां के आराध्य देव हैं कामदेव, कामदेव के रूप में यानी प्रद्युम्न जी, उनकी उपासना। इसके पहले का जो श्लोक है वहां पर एक बात है, उसी बात पर सब लोग तात्पर्य दिए हैं, एक ही बात पर, और वह जो तद भगवतो मायामयम रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुहित्री भी उपेताहंसु तद भर्तिर उपासते इदम च उदाहरति। जो अश्लोक होता है उसका अन्वय करना पड़ता है, उसके अर्थ को निकालने के लिए कभी आगे कभी पीछे कर दिया जाता है, लेकिन गद्य होता है प्रायः इसमें अन्वय होता है, डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो, इसका व्याख्या डायरेक्टली हो सकता है। तो यहां पर देखिए, तद भगवतो, वे भगवान, वे कैसे भगवान हैं, मायामयम, मायामय भगवान है। प्रभुपाद तात्पर्य दिए हैं सभी आचार्यों का कोट, सब लोग प्रायः इसी वर्ड पर कमेंट्री दिए हैं, मायामय। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायामय जो शब्द है, जैसा कि मायावादी लोग कहते हैं वैसा नहीं है। मायामय का मतलब माया रूप, माया का रूप। तो इसका मतलब हुआ तद भगवतो, वहां पर भगवान रहते हैं, उनका रूप कैसा है, मायामय, माया का रूप है, मायावादी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आचार्यगण कहते हैं मायामयम का मतलब माया, माया का मतलब प्रेम। बिहार में संस्कृत लोग बोलते हैं कभी कभी, वो भोजपुरी में तो कहते हैं उनको उसके अपने बच्चों का माया लग गया है, बच्चों से बहुत मोह माया है, माया मतलब प्रेम है, स्नेह है। तो यहां पर मायामयम का मतलब स्नेहमयी है। ये भगवान कैसे हैं जिन भगवान की आराधना लक्ष्मी देवी कर रही हैं, ये भगवान कैसे हैं, स्नेहमयी हैं। भगवान के सब स्वरूप स्नेहमयी हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं उनका अपना अपना लगाव होता है, वे अपने प्रभु को ही स्नेहमयी मानते हैं। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी राम जी को ही स्नेहमयी मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं स्नेहमयी, वो राम जी को स्नेहमयी मानते हैं। तो भक्तों का लगाव होता है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी हम तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश जो हैं संसार में सबसे सुंदर वही हैं, हमारा ऐसा विचार है, लेकिन कभी कभी हम वृंदावन आते हैं, मायापुर जाते हैं, तो भक्त लोग कहते हैं कि नहीं राधा श्याम सुंदर सुंदर हैं, राधा माधव सुंदर हैं, तो ये कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है, हम लोग यहां सुनते हैं या कहते हैं तो कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, सभी भक्तों का अपना अपना लगाव होता है ठाकुर जी से। भगवान का सब स्वरूप मायामयी है, स्नेहमयी है, प्रेममयी है। तो जप क्यों कर रहा है, लाइफ मेंबरशिप वाला प्रीचर, क्या नाम तुम्हारा है, सुलोचन का पार्टनर था, सच्ची प्राण है, क्या नाम उसका, तुमको कह रहा हूं सिर उधर कर रहा है, जब मत करो, सुनो, सुनने का मतलब भी सुना हुआ, जप का मतलब भी सुना हुआ, तो क्या सुनेगा, जप सुनेगा, कथा सुनेगा, जब मत करो, जब बाद में करना। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ स्नेहमयी। तो भगवान का सब स्वरूप जो है स्नेहमयी है। लक्ष्मी जी यहां पर भगवान के प्रद्युम्न स्वरूप को कह रही हैं कि भगवान कैसे हैं, मायामयम रूपम स्नेहमयी रूपम परम समाधि योगेन। इनकी उपासना कैसे कर रही हैं, परम समाधि अष्टांग योग का जो अंतिम लक्ष्य है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। समाधि की परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जहां पर सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ते हैं, कण कण में भगवान दिखाई पड़ते हैं, वह स्थिति जो है वह समाधि का स्थिति है। तो यदि कोई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सर्वत्र राधारास विहारी दिखाई पड़ते हैं, तो समझ लो कि वह भक्त कहां पर है, समाधि की स्थिति में। समाधि की स्थिति का यही परिचय है, यही लक्षण है। तो लक्ष्मी देवी कह रही है कि मैं अपने आराध्य देव स्नेहमयी स्वरूप भगवान का मैं सर्वत्र दर्शन कर रही हूं। रमा देवी लक्ष्मी देवी कर रही है, कैसे कर रही है, गते संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापति दुहिती। रात को प्रजापति संवत्सर के पुत्रियों के साथ में उन भगवान का आराधना करती हैं, पुत्रियों के साथ में, और दिन में उनके पुत्रों के साथ में। तो यहां पर प्रैक्टिकली स्केड्यूल बताया गया है लक्ष्मी जी के पूजा का। जैसे अपना स्केड्यूल है ना, दिन भर मंदिर नहीं खुला रहता है, 4:30 बजे मंगला आरती होता है, उसके बाद फिर 8:30 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 4:15 बजे, फिर 7 बजे, स्केड्यूल है ना अपना। तो वैसे ही स्केड्यूल है। दिन में लक्ष्मी देवी कैसे पूजा करती है भगवान का, इदम च उदाहरती, उदाहरती उतहरती, दिल से करती हैं, दिल लगाकर करती हैं, जप करती हैं। दिन में संवत्सर प्रजापति के पुत्रों के साथ में, और रात्रि में उनके सहयोगी होते हैं संवत्सर प्रजापति की पुत्रियां। पुत्र और पुत्रियां दोनों उनको असिस्ट करते हैं। जैसे हमारे यहां हेड पुजारी हैं, असिस्टेंट हेड पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं, असिस्टेंट के असिस्टेंट हैं, वो देवीदास भी है, कहां पर है, महाप्रसाद वाला, वो भी हेड पुजारी है, सब पुजारी एक के बाद एक सब असिस्ट करते हैं। तो वैसे ही यहां पर असिस्ट होता है। अब किस प्रकार से वहां पर लक्ष्मी जी केतुमाल वर्ष में पूजा करती है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कमेंट्री तो इतना सुंदर है, मन करता है कि उसी किया जाए। कृपामयत्मेव विवृणोति मंत्र जपंती एतत् मंत्रो उपासको नेय स्वसंबंधेन मंत्राय भाव देति व्यंजन्ति प्रणमति कांताय मत्पतये कामाय नमः इति अन्वय। इस शब्द यहां श्लोक में एक शब्द आया हुआ है कांताय, इसलिए मैं कहा कि श्लोक होना चाहिए तब पता चलेगा। आया हुआ कांताय कामाय नमस्ते उभयत्रय भूया कांताय। कांत मतलब प्रियतम पति, जैसे राधा कांत नमस्तुते, राधा कांत को हम, राधा के प्रियतम को प्रणाम करते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि लक्ष्मी जी यहां पर नाम लेकर के नहीं बोलती है, कहती है मैं अपने प्रियतम को प्रणाम करती हूं। तो शास्त्र में कोट किया गया है, देव पदानुरक्ति पत्नियु संपूर्ण नामोच्चारण न औचित्य। पत्नी के लिए अपने पति का नाम उच्चारण करना उचित नहीं है, शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कहते। आजकल तो पत्नी अपने पति के नाम से ही पुकारती है। हमारी मां कभी भी मेरे पिताजी को उनके नाम से नहीं पुकारे। उनके गुण से, उनका जो गुण है, उनका एक गुण है कि मैं उनका बेटा हूं, तो मेरे नाम से पुकारेगी कि उनके पिताजी हैं, ए फलाना के पिताजी। ये डॉक्टर हो गए डॉक्टर साहब, भले अड़े तुकार करें कोई बात नहीं, पति पत्नी में होता है, लेकिन नाम नहीं पुकारती है। पत्नियों नाम न गृहणिया, पत्नियां नाम लेकर पति को नहीं पुकारती है। ये कलयुग में पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं। और इसका प्रमाण है यहां पर लक्ष्मी देवी कांत शब्द कह रही है, प्रियतम, अपने प्रियतम की आराधना कर रही है। पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, लेकिन पति को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा तब तो परमेश्वर है, नहीं तो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा कि मैं परमेश्वर पूजा करो झंडे में जाओ, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा तो पूजा जरूर करनी चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर का यहां कर रही हैं, ये जो शब्द है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम, एक कामदेव के बीज मंत्र हैं। जैसे राम में र अ और म तीन शब्द है, ये तीनों शब्द है जो र है वो सूर्य का बीज मंत्र है, जो अ है वो अग्नि का बीज मंत्र है, नहीं जो र है वो अग्नि का बीज मंत्र है, जो अ है वो सूर्य का बीज मंत्र है, और जो म है वो चंद्रमा का बीज मंत्र है। इसलिए राम कहने से, र शब्द कहने से हमारे जितने भी कर्म फल हैं, पाप हैं, सब जल करके राख हो जाते हैं। उसमें अ शब्द आ गया, रा हो गया, तो अ शब्द से सूर्य का काम है प्रकाश लाना, तो पता चल जाता है कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो दुख का कारण है, और कृष्ण का भजन जो है वो आनंद का कारण है, तो कृष्ण का भजन करने लगते हैं। तो रा शब्द से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण का भजन करने लगते हैं। जब सब पाप नष्ट हो गए, कृष्ण का भजन करने लगे, तब क्या होगा, केवल आनंद कंद, तब आनंद ही आनंद आएगा, और वह है मां राम। तो वैसे ही यह जो यहां पर बताया गया है ओम, ओम शब्द जो है अ उ म, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों के लिए ओम लगता है। ओम उसका घोतक है जिसके पास कुछ शक्ति हो, यदि हरिदास के पास शक्ति हो जाएगी, इसके नाम भी ओम हरिदास आए नमः कर सकते हैं, लेकिन अभी शक्ति नहीं है, शक्ति होगा तब। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अ उ म के घोतक हैं ओम, और ह्राम ह्रीम ह्रूम ये बीज मंत्र हैं। किसके बीज मंत्र, कामदेव के, कामदेव के ये तीनों बीज मंत्र हैं। तो उन कामदेव का बीज के साथ में, बीज मंत्र के साथ में किया गया पूजा, जैसे गायत्री जब करते हैं तो उसमें भी काम गायत्री है, वहां बीज मंत्र पहले बोलते हैं बाद में। तो वैसे भगवान को जिनका इन बीज मंत्रों से पूजा की जाता है, नमो भगवते हृषिकेशाय, भगवान कौन है, वे भगवान हृषिकेश हैं। हृषिकेशाय स्वसौंदर्यादि मंत्रादि इंद्रियाकर्षकाय मंत्रादि माधुर्य संभोक्ते इति वा, बहुत सुंदर व्याख्या किया गया है। हृषिकेश का मोटा मोटी अर्थ है कि जो इंद्रियों के अधिपति है, लेकिन यहां पर वर्णन किया गया है कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि ऋषिकेश इंद्रियों के अधिपति हैं, लेकिन जो ये मंत्र है, बीज मंत्र हम लोगों के लिए स्पेशली महामंत्र, ये मंत्र क्या करता है कि हमारे इंद्रियों को इंद्रियाधिपति भगवान के सेवा में लगाने का अवसर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जब करेंगे तब क्या होगा कि हमारी इंद्रियां अनायास ही कृष्ण की तरफ जाएगी, ऋषिकेश की तरफ जाएगी, लगेगी। कहते आकर्षकाय, आकर्षित करता है ये मंत्र है? मंत्र इंद्रियादि आकर्षकाय, आकर्षण करता है, खींचता है। और यही मंत्र मंत्रे आदि माधुर्य संभोक्ते तो इति वा, तो एक तो आकर्षित करता है ऋषिकेश की तरफ, और इसी मंत्र को आप जपते जाओगे तो ऋषिकेश का प्रेम प्राप्त होगा। ये नाम जप करने का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। प्रेमापमर्थो महा, प्रेम की प्राप्ति। नाम तीन प्रकार के होते हैं, अपराध युक्त नाम जो कि हम लोग करते हैं, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त नाम भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, तो ऐसे नाम से प्रेम नहीं मिलेगा। बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तव ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधान। जन्म जन्मांतर तक राम राम करते रहो, फायदा है? सब तो फायदा नहीं है, फायदा है, लेकिन जो इसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति वो नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है अपराध शून्य हया क्रोय भजन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। अपराध शून्य हया, अपराध कितना होना चाहिए? जीरो। अपराध कई एक प्रकार के हैं, नामापराध, सेवापराध, वैष्णवापराध, धमापराध। इन अपराधों में सबसे खतरनाक अपराध है वह है वैष्णवापराध, जो कि हम लोग बिना रोक टोक के दिन भर करते रहते हैं, करते हैं ना, बैठ जाएंगे चार ब्रह्मचारी मिलकर, चार डिवोटी, अब पकड़ लेंगे विषय वस्तु ब्रजहरि प्रभु, खूब करेंगे, अरे कुछ नहीं करते हैं ऐसे, हम पकड़ किसी को पकड़ लेंगे। तो ये अपराध युक्त नाम करने से अच्छा है, मानव जीवन सफल भी हो जाएगा, वैकुंठ तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो नहीं मिलेगा। अलक्ष्य है कृष्ण प्रेम। उसके बाद आता है नामाभास। नामाभास की स्थिति जो है, जैसे सूर्य उगते हैं, सूर्योदय होता है समझ लिए 6 बजे, तो 5:30 बजे उजाला हो जाता है ना, सूर्य तो नहीं है लेकिन उजाला हो गया, तो सूर्याभास हो गया, सूर्य का आभास हो रहा है। वैसे ही नामाभास का अर्थ है कि भगवान का प्रेजेंस हम सब जगह फील करेंगे, सब जगह। जब पानी पिएंगे, रसो हम अब सुकौंते प्रभास मिश्र सूर्यो, पानी पिएंगे तो कहेंगे भगवान इसमें है, ऐसे डेली घड़ा 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 पी लेते पानी, कभी देखते हैं भगवान इसमें है, दिखाई पड़ते हैं, सूर्य उगते हैं दिखाई पड़ते हैं भगवान है। रसो हम अब सुकौंते शीतोष्ण, रसो हम अब सुकौंते प्रभा अस्मि से सूर्य, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन आभास होगा भगवान का, जैसे प्रहलाद महाराज को आभास हुआ, तो उन्होंने कहा इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा जतो जतो जामी ततो नृसिंहा। तो केवल मुंह चला रहा है कि जप कर रहा है? मैं तुमको पूछ रहा हूं, लाइफ नंबर वाला, क्या नाम तुम्हारे पीछे, ठीक तुम्हारे पीछे लाल कपड़ा वाला, वो मुंह आया था मांगा मैं था जप कर रहा है, था जप नहीं कर रहा है कि मुंह चला रहा है, पानी ले लो बल्कि शायद तकलीफ होगा तुमको। हाँ जी, तो नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी देख रहे थे, हिरण्यकश्यपु नहीं देख रहे थे, क्योंकि अपराध से, वो भी नरसिंह का नाम ले रहे थे लेकिन अपराध से ले रहे थे। जी गोस्वामी कहते हैं कि जो कंस हिरण्यकश्यपु ये लोग जो जो बात कहे हैं बिल्कुल शास्त्र का बात कहे हैं, शास्त्र का ही बात है, उसका अर्थ केवल उल्टा है। खैर उसका हम व्याख्या बाद में कभी करेंगे। तो नरसिंह भगवान का जो आराधना प्रहलाद जी किए, वह जो है वह आराधना जो है उन नामाभास के प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन ब्रज की गोपियां रूप सनातन माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी और चेतन महाप्रभु ने जो पाद दिया हम लोगों को, वह जो आराधना है परोकिया भावे जहां ब्रजे तो प्रकाश, जो ब्रज का जो परोकिया भाव है वह कृष्ण प्रेम देता है, वह है शुद्ध नाम। माधवेंद्रपुरी शुद्ध नाम करते थे, ईश्वरपुरी शुद्ध नाम किए, रूप सनातन शुद्ध नाम किए। हम लोग उसी संप्रदाय के हैं, हम रूपानुग वैष्णव हैं, तो हम लोगों को भी शुद्ध नाम करना चाहिए, नामापराध और नामाभास से ऊपर आना चाहिए। नामाभास के स्थिति पर तभी आ सकते हैं जब अपराध करना बंद करें, संकल्प लें कि आज के बाद हम अपराध नहीं करेंगे। दो भक्त हैं, यदि कोई भक्त पोजीशन पर है और देख रहा है दूसरा भक्त गलत कर रहा है तो वो कुछ कह सकता है, लेकिन जो पोजीशन पर नहीं है उनसे नहीं कहना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं परकर्मो भयावह, जिसका जो काम है वही करे उसके लिए अच्छा लगता है, मुफ्त में एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। परकर्मो भयावह, भक्ति में इतना शक्ति है कि शुद्ध भक्ति हम करना शुरू करें तो लोग बिना कहे अपने को गलती से अलग कर लेंगे। कल दर्शन मात्र से, दर्शन अपवित्र करो ये तुम्हार गुण, ये वैष्णव शुद्ध भक्त का ये आचरण है कि दर्शन मात्र से ही लोगों को वह पवित्र कर देता है। तो शुद्ध नाम जो करता है वह सबको पवित्र कर सकता है। तो यही बताया गया है कि जो मंत्र है ऋषिकेश को आकर्षित करता है और उससे हम प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ऋषिकेशाय सर्व गुण विशेषय विलक्षिता, जो भगवान इंद्रियों के नियंता हैं और जो भी संसार में अच्छा चीज दिखाई पड़ता है वो उनसे ही निकला हुआ है। यदि खराब किए हैं तो हम लोग किए हैं, पोल्यूटेड हम लोग किए हैं, भगवान बिल्कुल शुद्ध दिए हैं। भगवान गांव बनाए शुद्धता के लिए, हम लोग शहर बनाए कितना डर्टी फैला हुआ है, गांव में इतना डर्टी नहीं है। आजकल गांव वाले भी शहरी होते जा रहे हैं तो हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, सिंपल लाइफ था। तो सर्वगुण विशेष भगवान में सर्वगुण है और जो भगवान के संपर्क में आएगा उन ऋषिकेश के संपर्क में आएगा वह सर्वगुण से
संपन्न हो सकता है. तो आई थिंक आई विल नॉट गो ओवर दिस, आई विल जस्ट गो ओवर दी वर्स, बिकॉज इस पर जाऊंगा तो लंबा जाएगा, समय बीतते जा रहा है. तो आई विल फिनिश दिस वर्स. सर्व गुण विशेष विलक्षिता, विलक्षिता, अभिलक्षिता, लक्षिता, लक्षिता में दिखाई पड़ते हैं, हैं? और विलक्षिता मतलब विशेष रूप से दिखाई पड़ते हैं. समस्त गुणों से संपन्न हमारे प्रभु हैं जिनका हम आराधना करने जा रहे हैं. कृष्ण में कोई अवगुण ढूंढने जाए अवगुण मिलेगा नहीं. प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर लड़की बाजी तो करो लो डंडा मारेंगे. भगवान लड़की बाजी की रास बिहारी की जय. यहां चोरी करो लो डंडा मारेंगे. भगवान माखन चोरी किए. चतुर्भुज दास माखन खा रहे हो क्या? भगवान माखन चोरी किए. माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. भगवान लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गए. यहां लड़ाई कर डरपोक है, कायर आदमी है. भगवान ग्रहण चोर जी का उपाधि मिल गया. तो भगवान सर्वगुण विशेष ही विलक्षिता, विशेष रूप से सभी गुणों से संपन्न है और लक्षित होता है वह गुण. आकुतया नाम, आकुति नाम, वैसे महापुरुष का, वैसे पुरुष का कोई आकुतयाम मतलब इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, चित्ति नाम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और चेतसाम मन बुद्धि अहंकार के द्वारा. शरीर में तीन ही है, एक ग्रॉस बॉडी है और एक सटल बॉडी है. जो ग्रॉस बॉडी है उसमें दो है, एक है जनिंद्रिय और एक है ज्ञान इंद्रिय. तो जो जनिंद्रिय है यानी या कर्म इंद्रियों से कहा जाता है, मुंह हाथ पैर ये है ना, कर्म करने वाला, हाथ से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं, मुंह से काम करते हैं खाने का और मल मूत्र त्यागने का. ये पांच जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को आकूति नाम कहा गया है, है? क्रिया शक्ति है, कर्म, इनसे कर्म होता है. मुंह से खाते हैं, हाथ से मार देते हैं किसी को, सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पैर से वृंदावन जाते हैं. तो ये आकुति नाम, चित्ति नाम. प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं चित्त का अर्थ होता है इंद्रिया, चित्त का अर्थ होता है मन, चित्र का अर्थ होता है चेतना, चित्त का अर्थ होता है भावना. तो चित्ति नाम बहुवचन कहा गया है, इसका मतलब ज्ञान इंद्रिया. तो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और चेतसाम मन बुद्धि अहंकार, इन सब के द्वारा भगवान कौन है सब विशेषाम चाधिपतये, इन सब के अधिपति हैं. अभी तक ऋषिकेश का व्याख्या कर रही हैं लक्ष्मी जी, किन भगवान को प्रणाम कर रही है? ऋषिकेश को प्रणाम कर रही है. वो ऋषिकेश कौन है? जो सब प्रकार के गुणों से संपन्न है और हमारे समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता है, अधिपतये, अधिपति हैं, मालिक हैं. षोडश कलायाम, षोडश कला के आचार्यगण अलग अलग व्याख्या किए हैं. षोडश कला मतलब भगवान सोलह कला से परिपूर्ण है. और दूसरा कहा गया है कि दस इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है पांच, यानी सॉरी ग्यारह इंद्रियां, दस पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, मन को भी एक इंद्रिया कहा गया है. मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति यान्ति कर्षति, मनस्थान इंद्रियाणी, छठा इंद्रिया जो है वह है मन. तो पांच ज्ञान इंद्रिया और छठा मन और पांच कर्म इंद्रिया, ग्यारह हो गए. और ज्ञान इंद्रिया का विषय, जैसे आंख का विषय क्या है? हैं? रूप, रूप, हाँ,
हिंदी हो रहा है ना तो रूप होगा। कान का विषय क्या है? अरे हुंकारी तो भरो, शब्द ध्वनि में शब्द। जीवा का विषय क्या है? स्वाद। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। नाक का विषय क्या है? गंध। तो ये पांच विषय हैं। तो ये मिलाकर के हो गया 11। षोड़श कलयाम छंदमया। क्या सुंदर बात है, भगवान वेदमयी है, भगवान का गुणगान वेद के सुंदर सुंदर उक्तियों से किया गया है। डेली हम लोग करते हैं, गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्त शत संभ्रम्य सेव्यमानं, गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। ये छंदमयी वेदोक्तियों के द्वारा भगवान का उपमा यहां दिया गया है कि भगवान कैसे हैं, छंदमयी अन्नामयी। भगवान अन्नमयी हैं। एक आचार्य कहते भगवान निराकारमयी, भगवान खाते भी हैं। हम लोगों का शरीर अन्नमयी है लेकिन भगवान का शरीर अन्नमयी नहीं है, खाते हुए भी। ऐसा बात नहीं कि बिना खाए भगवान मर जाएंगे, हम तो बिना खाए मर सकते हैं। तो यहां पर अन्नमयी का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, जो उनका भजन करता है उनका वे पोषण करते हैं। तो अन्नमयी का मतलब कि भगवान पोषक हैं, भक्तों के भक्ति का पोषण करते हैं। कई एक प्रकार से पोषण होगा, अन्न तो एक है। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहे हैं, वो एक प्यार है जिसमें कहा गया है कि अन्न खाने से शरीर हृष्टपुष्ट होता है, लेकिन भगवान का भक्ति करने से, भगवत ज्ञान की प्राप्ति से हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन हृष्टपुष्ट होता है। तो आध्यात्मिक जीवन कब हृष्टपुष्ट होगा? जब हमारा श्रवणम कीर्तनम फर्स्ट क्लास का रहेगा। तो अन्नमयी का यहां पर अर्थ है, माता कुंती कहती है कि हे भगवान, ये संसार क्लेश से भरा हुआ है, लेकिन इस क्लेश से लोगों को दूर करने के लिए आप श्रवण कीर्तन इत्यादि देकर गए हैं, आप देते हैं। भगवान का हम कथा सुन रहे हैं, भगवान लीला किए। भगवान यदि चाहते तो कंस को पहले दिन मार सकते थे। 14 साल भगवान कष क्यों उठाए हम लोगों के लिए लीला कर करके, ताकि उन लीलाओं का हम गुणानुवाद कर सके, और वो लीला जो है वो हमारा पोषण है। लीलाओं से पोषण होता है, भगवान पोषण करते हैं लीलाओं से। तो अन्नमयी, अमृतमयी भगवान का गुणानुवाद, भगवान की भक्ति जो है वो अमृतमयी है। हम लोगों का पोषण होगा अन्न के द्वारा, और अन्न भी भगवान से प्राप्त होता है। प्रजन्याद अन्न संभव, वर्षा से अन्न होता है और सुधर्म का पालन करने से वर्षा होता है, और हम लोग अन्न से जीवन धारण करते हैं। तो अन्नमयी अमृतमयी भगवान की कृपा दृष्टि जो है मायामयम, वो अमृतमयी है, सुमधुर है, इसीलिए भक्त लोग उसमें लगे रहते हैं। अब लक्ष्मी ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहती, अब प्रार्थना करना। सर्वमयी, सब कुछ भगवान में है। जो चाहिए किसी व्यक्ति को सुखी रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए, सर्वमयी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सहसे उन्हीं भगवान को ओजसे बलाय कांताय, मन से, इंद्रियों से, बल से, सब प्रकार से अपने कांत, अपने प्रियतम कामदेव को हम दिन में रात में, इस जन्म में और आगे के जन्म में भी हम उनका उपासना करते हैं। यहां पर कहा भूयात, हो, भूयात भू मतलब हो, शुभ हो, सब कुछ फर्स्ट क्लास रहे। कब रहेगा फर्स्ट क्लास? जब भगवान का हम भजन करेंगे। तो समराइज दिस वर्स, यहां पर लक्ष्मी देवी उन ऋषिकेश के चरणों में प्रार्थना करने जा रही है, प्रार्थना जो उनके कांत हैं, जो उनके प्रियतम हैं, और यह प्रार्थना दिन रात और अगले जन्म तक होता रहे। जो भगवान सर्व गुण संपन्न हैं, जो हमारे समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, शरीर, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय इत्यादि के सब कुछ के, और जो इंद्रियां जिन वस्तुओं से बनी हैं, षोडश वस्तुओं से, उसके भी वे अधिष्ठाता हैं, वे कृपा करके हम लोगों का भरण पोषण करते हैं अन्नमय रूप में। उसके साथ साथ अपनी लीलाओं को देकर के हम लोगों का भरण पोषण करते हैं और सर्वमयी सब प्रकार से हम लोगों का रक्षा करते हैं। यानी जो भजन करता है उसका भी रक्षा करते हैं और जो नहीं करता है उसका भी रक्षा करते हैं, सर्वमयी। तो वैसे भगवान को हम सुबह शाम इस जन्म में और आए के जन्म में प्रार्थना करेंगे। ये संकल्प है लक्ष्मी जी का, जो उनकी प्रियतमा है, जो उनके साथ रहती है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग किस गल के कुत्ते हैं। हम लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मंगला आरती नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये प्रिस्क्राइब ब्राउन प्रभुपा जी कहे हैं, सोलह माला जप होना चाहिए। कुछ भी हो जाए मिनिमम 8 घंटा हम सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। ऐसा संकल्प रहेंगे तो कृष्ण हमारे कांत हो सकते हैं, प्रियतम हो सकते हैं। कृष्ण के तरफ से तो कैसे कृष्ण है, कति मायामयम, भगवान का कृपा दृष्टि हम पर है, भगवान का माया लगा हुआ है हम लोगों में। दुख की बात है कि जो माया भगवान में लगनी चाहिए वो माया पुत्र परिवार और समाज में लग गई है। इसलिए माता कुंती भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, हे कृष्ण, जो मेरा अटैचमेंट हो गया है विष्णु कुल में और पांडु कुल में, कृपया इसको काट दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, बुआ जी, यदि आप कह रहे हो कि हमारा संबंध आप कटवाना चाहती हो विष्णु कुल से और पांडु कुल से, लेकिन मैं भी तो विष्णु वंशी हूं, तो आप क्या चाहती हो कि हमसे भी आपका संबंध कट जाए? संबंध नहीं समझे कुंदी, नहीं नहीं कान पकड़ जाए, ऐसा बात नहीं है। अरे पांडव गण भी डिवोटी हैं, विष्णु भी डिवोटी हैं, तो आप संबंध क्यों काटना चाहती हो? युधिष्ठिर डिवोटी नहीं है क्या? उद्धव इत्यादि डिवोटी नहीं है क्या? संबंध क्यों काटना चाहती हो? शास्त्र कहता है साधु संग, और आप संबंध काटना चाहती हो। ठीक है, मुझसे नहीं काटना चाहती, इनसे क्यों काटना चाहती हो? तो माता कुंती का आचार्य जी कहते हैं कि कुंती का वो उस संबंध को नहीं काटना चाहती है, यानी भक्त के संबंध को नहीं काटना चाहती है, लेकिन जो शारीरिक संबंध है कि वो विष्णु कृष्ण में जन्म ली थी, महाराज सुरसेन की पुत्री थी और पांडवों की जननी, तो पांडव कहें कि माता कुंती मेरी माता है, उस संबंध को काटना चाहती थी। नहीं तो कहते हैं कि भक्तों में और आप में मेरा मन वैसे ही अहर्निश चलता जाए जिस प्रकार से नदियां समुद्र में मिलने के लिए कल 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 करते हुए दौड़ती रहती है, वैसे ही हमारा मन हे ऋषिकेश निरंतर आप में ही लगा रहे। तो यहां भी ऋषिकेश बताया हुआ है और वहां माता कुंती भी ऋषिकेश को प्रार्थना करती है। तो हम लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा धन मन धन सब कुछ निरंतर ऋषिकेश में लगा रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा मीटिंग है।